जीवन एक प्यास है, सभी को कुछ तलाश है। जीवन एक प्यास है, तलाश में उम्र भर चले। कोई जानता नहीं वो कहाँ मिले, फिर भी टूटती नहीं ये जो आस है। सभी तलाश है, जीवन एक प्यास है। सभी को कुछ तलाश है।
जीवन के अनंत सागर में मैं कौन हूं, जीवन के इस भाग दौड़ में मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ। अपने जीवन पर एक नजर, मौन देह की और मन की हलचल समाप्त। मन शब्द, मन स्थिति, मन एकाग्र, स्वयं को देखना है, संसार का सभी चिंतन, संसार की सभी बातें एक और, मन की गहराई में एक गहन सन्नाटा, एक अलौकिक मौन। जिसमें मैं खड़ा हूं, स्वचिंतन आत्मचिंतन इस दौर में कहीं भटक तो नहीं गया। गहराई से स्व के विषय में, स्व से बातें, दिख रहा है। मुझे अपना संपूर्ण जीवन बचपन से लेकर अब तक मैंने क्या क्या किया, वो घर, वो गांव जहां मैंने जन्म लिया, वो मात पिता की पालना, वो भाई बहन, वो बचपन का बेफिकर जीवन, और आगे वो स्कूल, वो पाठशाला, कैसी निरागस चेतना थी, वो टीचर्स, वो दोस्त, कैसे निश्चिंत जीवन थे। कैसे वो सारे दिन गुजर रहे थे, और आगे जैसे जैसे बड़ा होता गया क्या होने लगा। वो कॉलेज, वो कॉलेज का जीवन, वो करियर, वो पढ़ाई, और आगे बचपन से अब तक आई हुई शरीर की बीमारियां, वो अस्पताल, दवाई, बचपन से अब तक जो प्रिय घटनाएं हुई, संपूर्ण साक्षी भाव से अपने ही जीवन को देख रहा हूं। देख रहा मेरा वर्तमान जीवन, वो घर जहां मैं रहता हूं, रहती हूं, पति, पत्नी, बच्चे, वो ऑफिस, वो मित्र, वो रोज का ट्रैवलिंग, क्या यही जीवन का सार है? वो निश्चिंत जीवन बचपन का, और कहां मैं आ गया, किस लिए भाग रहा हूं, कौन मेरे है और कौन पराए, कहीं ऐसा तो नहीं कि जीवन का लक्ष्य ही खो गया। क्यों ऐसा लगता है, अंदर एक खालीपन, एक स्पिरिचुअल वैक्यूम, सब कुछ तो है, धन संपदा, रिश्ते, पोस्ट पोजिशन, सब कुछ है, फिर भी एक ऐसी प्यास है, एक ऐसा खालीपन है जो कोई भी बात इस खालीपन को नहीं भरती। आज इस अलौकिक वायुमंडल में, इस पवित्र प्रांगण में मैं आत्मा, मैं चेतना स्वनिरीक्षण के लिए आई हूं। अपने ही जीवन को गहराई से देखने, समझने, एक गहन सन्नाटा अचानक मन शांत हुआ, जैसे कुछ पल के लिए सारी चिंताएं खो गई। आत्मचिंतन, आत्ममंथन, आत्मान्वेषण, मैं शांत स्वरूप हूं। मेरा वास्तविक स्वभाव शांति है, प्रेम है। मैं सच्चित आनंद स्वरूप हूं। और इसी संकल्प से मैं इस सभा में आज अपने आप को जानने के लिए, समझने के लिए शांत मन से बैठूंगी। मैं आत्मा हूं। अगले कुछ समय में जो भी सुनूंगी, सुनते सुनते ही उन बातों को धारण करूंगी। शांत, सभी आंखें खोलेंगे। 1886 रूस के बहुत बड़े लेखक लियो टॉल्स्टॉय ने एक कहानी लिखी थी। कहानी का शीर्षक था हाउ मच लैंड डस द मैन नीड, एक मनुष्य को कितनी जमीन चाहिए। कहानी रशिया की है। एक गरीब किसान है, जमीन का एक टुकड़ा उसके पास है। मेहनत करता है, काम करता है, और एक दिन एक परिव्राजक, एक सन्यासी उसके घर आता है और उससे कहता है, तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम्हें तो वहां जाना चाहिए, वो जो दूसरी जमीन है वहां पर, उस गांव में जमीन मुफ्त मिलती है, तुम वहां जाओ। वो किसान पखोम जिसका नाम है, रात भर सोचते रहता है क्या करूं क्या करूं। सुबह तक मन को तैयार करता है कि मुझे वहां जाना चाहिए, उस दूसरे स्थान पर जाना चाहिए, और वो अपना सब कुछ समेट कर उस स्थान पर पहुंचता है। लोगों से पूछता है यहां की जमीन का क्या भाव है। वो कहते हैं, जमीन का भाव, यहां तो जमीन मुफ्त में मिलती है, पर एक शर्त है, और शर्त यह है कि सुबह से तुमको भागना है। जितना तुम भागोगे वो सारी जमीन तुम्हारी होगी, पर शर्त यह भी है कि शाम तक वापस लौट कर आना है। जितना तुम भाग लोगे वो सारी की सारी जमीन तुम्हारी। रात भर सो नहीं सकता, सोचता है कितना भागू कितना नहीं भागू। सुबह सुबह उठकर आता है, सारे गांव वाले खड़े हुए हैं, और वो अपनी यात्रा चालू करता है, पैदल चलता है। सोचता है पैदल चलूंगा तो जमीन कम मिलेगी, क्यों ना मैं भागू, और भागने लगता है। भागते भागते भूख लगती है, भोजन साथ में है, पर सोचता है अगर भोजन खाने के लिए रुक गया तो जमीन कम हो जाएगी, भोजन को फेंक देता है। एंड ही इज रनिंग एंड ही इज फाइटिंग। प्यास लगती है, पानी साथ में है, परंतु पानी पीने के लिए अगर रुक गया तो शायद जमीन कम हो जाएगी। पानी की बोतल फेंक देता है और भागने लगता है और भागने लगता है और भागने लगता है। दोपहर हो जाती है, सूरज सिर पर है क्योंकि वापस भी लौटना है, सूर्यास्त से पहले उसी स्थान पर पहुंचना है जिस स्थान से वो आया है। सोचता है वापस लौटू, परंतु सामने की जमीन थोड़ी हरी हरी दिखाई दे रही है। सोचता है ये जमीन भी तो मिलनी चाहिए, थोड़ा और भागता है और भागता है। 2 बज रहे लगभग, अब सोचता है अब तो वापस लौटना ही चाहिए, परंतु सामने की जमीन थोड़ी ज्यादा हरी दिखाई दे रही है, ज्यादा उर्वर उपजाऊ। सोचता है और थोड़ा भाग लेता हूं, और भागता है और हाँफता है और भागता है और हाँफता है और भागता है और हाँफता है। तब 4 बज जाते होंगे। सोचता है अब तो वापस लौटना ही पड़ेगा, अगर नहीं लौटा तो जमीन गई क्योंकि सूर्यास्त से पहले पहुंचना है। और फिर ऐसी तेजी से भागता है, ऐसी तेजी से भागता है जो जीवन में आज तक कभी ना भागा होगा। इतना तेजी से गांव वाले दिखाई देने लगते हैं, दूर वो पुकार रहे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, प्रोत्साहित कर रहे। और वो दूर जोर से भागता है और जोर से भागता है और जोर से भागता है, और ऐसा तेज भागता है, परंतु सूर्यास्त तो उधर हो रहा है और अब सूर्यास्त होने को ही है और सूर्यास्त हो गया और बस थोड़ी देरी रही है और वो धड़ाम से नीचे गिरता है, मर जाता है। गांव वाले कहते हैं आज एक पागल फिर मर गया। आप सबसे प्रश्न है ऐसा क्यों हुआ, क्यों हुआ? लोग और सेटिस्फेक्शन नहीं है, संतोष नहीं है, और तृष्णा, और जो हमारे पास है उससे ज्यादा कुछ मिल जाए ये प्यास है, और इसके अतिरिक्त तो भी कोई और उत्तर हो सकता है। अगर 12 बजे लौट गया होता तो टाइम मैनेजमेंट, शायद समय को नहीं समझ पाया, कहीं ये पखों मैं तो नहीं, और भागू और भागू और भाग रहा हूं और भाग रहा हूं। पीछे से कोई कह रहा है, अंदर से कोई पुकार रहा है, रुक जाओ वापस लौट चलो, पर हमारे पास समय ही नहीं। वापस लौटने का संकल्प आता है, परंतु सामने की जमीन, सामने का घर, सामने की कार, सामने का पोस्ट, सामने की पोजिशन थोड़ी ज्यादा उपजाऊ उर्वर फर्टाइल, और थोड़ा भाग लेता हूं और थोड़ा भाग लेता हूं और थोड़ा भागना, और भागते भागते पता नहीं कहां पहुंच गए। इट्स अ टाइम टू स्टॉप टू बिगिन द रिटर्न जर्नी। एक साइंटिस्ट ने अपनी जीवन कहानी लिखी, आई हैव स्पेंट माई लाइफ इन रिसर्चिंग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड टुवर्ड्स द फैग एंड ऑफ लाइफ आई फील लाइफ हैज स्लिप्ड थ्रू माय फिंगर्स। सारा जीवन में अनुसंधान करता रहा, रिसर्च करता रहा, परंतु जीवन की शाम में ऐसा क्यों लग रहा है कि जो करना था, जो पाना था, जो होना था वो हुआ ही नहीं, जो पाना था वो मिला ही नहीं, अनमिला ही रह गया जीवन। ये कुंठा, ये फ्रस्ट्रेशन। आर्थर जैकब, अमेरिका का सबसे बड़ा रईस उस समय का जब टाइटैनिक डूब रहा था, उस टाइटैनिक में वो था, द फर्स्ट मल्टीमिलियनेयर ऑफ अमेरिका। मरते समय उसने लिखा, आई एम द सैडेस्ट मैन ऑन अर्थ, मैं इस संसार का सबसे दुखी व्यक्ति हूं। हेनरी फोर्ड, फोर्ड की कार, कार का पहले फोर्ड की कारें होती थी, फोर्ड कंपनी का प्रथम जनक जिसको कहेंगे, कार जिसने संसार में लाई वो हेनरी फोर्ड, सबसे अमीर व्यक्ति, वो लिखता है, When I was mechanic, I was happier than what I am now। जब मैं मैकेनिक था तब बहुत सुखी था और अब इतनी बड़ी कंपनी का मालिक हूं पर दुखी हूं। क्यों, क्या कारण है? शायद जीवन कहीं भटक गया है, शायद जीवन तनाव ग्रस्त हो गया है। इतना तनाव में जीता है व्यक्ति कि उसे खुद पता नहीं कि मैं तनाव में हूं। स्ट्रेस का स्टैटिस्टिक्स किसी ने निकाला था, हमारे बहुत सारे तनाव उन कारणों से है, उन चिंताओं से है, उन बातों से है जो अभी तक हुई ही नहीं है, इमेजिनरी है। वो हो जाए तो कुछ पास्ट की घटनाओं से, कुछ स्वास्थ्य की वजह से है, कुछ भय की वजह से है, क्या होगा। और संसार में सबसे बड़ा भय कौन सा है? द ग्रेटेस्ट फियर ऑन अर्थ इज क्या कहेंगे, मृत्यु, दूसरा बीमारी, सब कुछ छिन जाने का। उससे भी बड़ा एक भय है और वो भय है फियर ऑफ द अननोन, अज्ञात का भय, पता नहीं क्या होगा, अज्ञात है उसका भय है। और ये भय इतना गहरा, इतना सबकॉन्शियस में समाया हुआ है कि भयभीत है चेतना, उसे खुद नहीं पता मैं भयभीत किस लिए हूं, कहीं छूट ना जाए, स्वजनों की मृत्यु, स्वजनों की बीमारी और कुछ, कई सारे भय अज्ञात है, सबकॉन्शियस में दबे हुए हैं, अवचेतन में दबे हुए हैं और वहां से तनाव को उत्पन्न करते हैं। क्या करें जो इस भागती दौड़ती जिंदगी में मन शांत हो जाए, संतुष्ट हो जाए, सब कुछ करते हुए घर गृहस्थी में रहते हुए भी खुशी वाला जीवन हो, दुख नहीं। विदेश का एक यात्री भारत में आता है, देखता है कंस्ट्रक्शन हो रहा है, निर्माण का कार्य हो रहा है, पूछता है एक मजदूर से तुम क्या कर रहे हो, वो मजदूर क्रोध में आके कहता है देखता नहीं मैं क्या कर रहा हूं, पत्थर तोड़ रहा हूं, पत्थर, कठोर पत्थर, और नियति ने मेरे साथ हमेशा ऐसा किया है। वो विदेशी दूसरे मजदूर के पास जाता है, पूछता है तुम क्या कर रहे हो, वो बेचारा उदास आंखें उठाकर कहता है क्या तुम देख नहीं सकते, मैं आजीविका कमा रहा हूं, बीवी है, बच्चे हैं, उनके लिए कमाई कर रहा हूं। वो विदेशी तीसरे के पास जाता है, तीसरा मजदूर खुशी खुशी से नाच रहा है, झूम रहा है, पत्थर तोड़ रहा है, पूछता है तुम क्या करते हो, वो कहता है मैं भगवान के लिए मंदिर बना रहा हूं। इन तीनों में से हम कौन, पत्थर तो नहीं तोड़ रहे सुबह से, भोजन कर रहे पत्थर तो नहीं तोड़ रहे, वापस वही आज भोजन में, जॉब पर जा रहे इतनी ट्रैफिक, सरकार ने ये करना चाहिए वो करना चाहिए, ऑफिस में गए फिर से निगेटिव वायुमंडल, खबरें जो सुनते हैं सुबह से निगेटिव। आर यू एंजॉयिंग योर वर्क? प्रोबेबली नॉट। वो विदेशी यात्री लौट जाता है, कई सालों के बाद वापस लौटता है देखने के लिए उनका तीनों का क्या हुआ। पहला अभी भी पत्थर ही तोड़ रहा है, दूसरा साहूकार बन गया है, बहुत पैसे कमा लिए, तीसरे का क्या हुआ होगा वो आप बताएंगे। वो जो भगवान के लिए मंदिर बना रहा था, वो जो खुश था, वो जो खुशी खुशी से झूम रहा था, जो अपने वर्क को, अपने कार्य को एंजॉय कर रहा था, उसका क्या हुआ होगा, कोई कल्पना, एनी गेस? वो एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व बन गया है जिसके पास हजारों लोग आ रहे हैं, तनावग्रस्त, दुखी, उदास, हताश, निराश, और उनको वो ज्ञान का मार्ग बता रहा है। अब उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो स्वयं ही प्रकाश बन गया है, एक हीरा जो कि जगत को प्रकाशित कर रहा है। तो क्या हम करें जिससे हमारा यह तनावग्रस्त जीवन सब तनाव से मुक्त हो जाए, जहां हम हैं वहीं रहे, ना स्थान बदलेगा, ना व्यक्ति बदलेंगे, ना परिस्थिति बदलेगी, तुम्हें ही बदलना है। अपनी डायरी में नोट करके रखना ये बात, ये स्थान ठीक नहीं है, ये व्यक्ति ठीक नहीं है, ये लोग ठीक नहीं है, बॉस ठीक नहीं है, कॉलीग ठीक नहीं है, ये साथी ठीक नहीं है, सबको बदल दो, ना स्थान बदलेगा। कैन आई गेट ट्रांसफर? ना व्यक्ति बदलेंगे, इनको हटाओ, ना परिस्थिति। बदलना किसको है? मुझे। जब मैं बदल जाता हूं तो सब कुछ बदल जाएगा अपने आप। एक सूफी संत ने अपनी जीवन कहानी लिखी है, लिखता है, जब मैं बहुत छोटा था, सूफी संत भाईजीत, मन में उमंग था, संसार को बदल दूंगा, विश्व को बदल दूंगा, आई विल ब्रिंग आउट वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। थोड़ा बड़ा हुआ, पता चला ये दुनिया को बदलना बहुत मुश्किल है, इतनी बड़ी दुनिया को मैं नहीं बदल सकता, किस किस को बदलू? फिर सोचा समाज को बदल दूंगा, जिस समाज में मैं रहता हूं, ये सारे समाज को बदल दूंगा। और थोड़ा युवा हुआ, प्रवण हुआ, इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि समाज को बदलने में बहुत समय लगा दिया, समाज तो बदला ही, अपने घर वालों को बदलूंगा, ये मेरे वश में है, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी आज्ञा को मानना ही पड़ेगा इनको, जो मैं बोलूंगा उनको करना ही है, इनको बदल दूंगा। अब लिखता है बूढ़ा हो गया हूं, रो रहा हूं, क्योंकि अब मैंने जाना मैं एक ही व्यक्ति को बदल सकता हूं, वो कौन है? मैं स्वयं। किस किस के मुंह पर पट्टी लगाऊं, किस किस को कहूं कि ये नहीं करो, वो करो, ये ठीक नहीं कर रहे हो, वो ठीक नहीं कर रहे हो, मुझे स्वयं को बदलना है। स्व परिवर्तन विश्व परिवर्तन करेगा। तो ये जो तनाव है, जो हम पर हावी हो रहा है, वी नीड टू कंट्रोल दिस स्ट्रेस बिफोर इट कंट्रोल्स अस, वी नीड टू एनस्लेव दिस स्ट्रेस बिफोर इट एनस्लेव्स अस। क्या किया जाए? तो आज के इस सत्र में ऐसी हम कुछ बातें देखेंगे जो हमें जीवन में करनी है, और ये बातें सुनते सुनते ही, केवल सुनना नहीं है, सुनते सुनते साथ साथ अपने सारे जीवन को देखते जाना है, और कहा ये बात मैं करूं अपने जीवन में, अगर ये बात मेरे जीवन में आ जाए तो क्या होगा, एक्सपेरिमेंट करके देखना है। महात्मा गांधी ने अपने जीवन कहानी में लिखा है, जीवन कहानी का नाम ही है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, सत्य के प्रयोग। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, डू नॉट बिलीव एनीथिंग बिकॉज यू हैव रेड इट समवेयर, डू नॉट बिलीव एनीथिंग बिकॉज इट हैज बीन सेड बाय सम ग्रेट मैन, डू नॉट बिलीव एनीथिंग बिकॉज इट हैज बीन कमिंग डाउन फ्रॉम ट्रेडिशन एंड हैलोड बाय कस्टम्स एंड रिचुअल्स, फाइंड द ट्रुथ योरसेल्फ। इसलिए किसी पर विश्वास नहीं करो कि ये व्यक्ति कह रहा है, इसलिए किसी पर भी विश्वास नहीं करो किसी ग्रंथ में लिखा है, किसी किताब में लिखा है, किसी फिलोसोफर ने कहा है, या फिर परंपरा से वो बात चली आ रही है, तुमको करना ही है ना, फाइंड द ट्रुथ योरसेल्फ। इसलिए नहीं कि ब्रह्मा कुमारी में हम गए हैं, ये बहने ये भाई जो बताएगा वो हम मानेंगे, क्यों मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानो, रिजेक्ट कर दो, फाइंड द ट्रुथ योरसेल्फ। खुद एनालाइज करो सत्य को, खुद देखो तराजू में डाल के, ये बातें इन्होंने कही है, ये करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, हम क्यों करें, क्या इन्होंने कह दिया इसलिए कहे, राइट, एक्सपेरिमेंट इट, रिसर्च ऑन इट, करके देखो, अगर ठीक लगे तो ठीक, नहीं तो थ्रो इट अवे, थ्रो इट एज नॉनसेंस, फाइंड द ट्रुथ योरसेल्फ। तर्क बुद्धि है हमारे पास, एनालिसिस की पावर है, हम खुद एनालिसिस कर सकते हैं कि अब तक जीवन में जो कुछ किया उसका परिणाम ये निकला, इज देयर एनी ऑप्शन बी। फेसबुक की सीईओ ने अपनी जीवन कहानी लिखी, ऑप्शन बी किताब है, उस किताब का नाम है ऑप्शन बी। उसके पति की मृत्यु हो गई, पति की मृत्यु के बाद जीवन में अंधकार छा गया, समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करूं, जैसे सब कुछ टूट गया, उसका खत्म हो गया जीवन ही समाप्त, ऐसी नैराश्य।
और अचानक उसको समझ में आया कि नहीं, जीवन यहाँ पूरा नहीं होता, एक दूसरा भी जीवन जीने का एक और तरीका भी है। और फिर उसने वो किताब लिखी ऑप्शन बी। हम जो कुछ आज तक किए वो ऑप्शन ए था, क्या ऑप्शन बी भी है? This is the way I have managed my relationship. This is the way I have managed my traveling. This is the way I have managed my job, my work. This is the way I have managed my children. This is the way I have managed my past. This is the way I have managed my past traumatic memories. Is there a way out? Is there another way? क्या एक दूसरा मार्ग भी है? Let us explore. क्योंकि जो कुछ जीवन में हुआ है बचपन से अब तक दगना घटनाएं प्रभाव छोड़ कर गई है, अब तक भूले नहीं है उन बातों को। अभी भी उसकी याद आ जाए तो आंसू आ जाता है, डूब जाता है दुख में मन। तो ऐसी हम कुछ बातें देखेंगे, एटलीस्ट 26 पॉइंट्स। फर्स्ट, एक्सेप्टेंस। तनाव से मुक्ति का पहला मार्ग है स्वीकार करना। किसको स्वीकार करेंगे? पहले तो स्वयं को स्वीकार करो। मैं जो हूं, मैं जैसा हूं, स्वयं को स्वीकार करता हूं, विथ ऑल माय फॉल्ट्स, विथ ऑल माय फेलिंग्स, विथ ऑल माय इम्परफेक्शंस, मेरी जितनी भी कमियां हैं, खामियां हैं, कमजोरियां हैं, उन सब के साथ मैं स्वयं को स्वीकार करता हूं। कई लोगों ने अपने आप को रिजेक्ट करके रखा है, मेरे नाक ठीक नहीं है, मेरे गाल ठीक नहीं है। हमारे ओपीडी में लोग आते हैं, माता जी कहती है ये बेटा है मेरा, पर ही इज नॉट हैप्पी विथ हिज फिजिक, डिप्रेशन में, एमबीबीएस कर रहा है, फर्स्ट ईयर में है, पर उदास रहता है, डिप्रेशन की गोलियां चल रही है, क्योंकि उसको उसकी नाक ही पसंद नहीं है। इज देयर एन ऑप्शन ऑफ प्लास्टिक सर्जरी इन योर हॉस्पिटल? ऐसे प्रश्न लेकर आते हैं। दूसरा, स्वजनों को स्वीकार ही नहीं किया है, पत्नी को रिजेक्ट लिस्ट में डाल के रखा है, माइंड में स्वीकार नहीं किया है उसे, क्योंकि उसमें बहुत सारी कमियां हैं। बच्चों को स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि जो अपेक्षाएं हमारी उनसे है वो कभी पूरी नहीं करते, स्वीकार ही नहीं किया है। हमेशा यही बता देते तुमको ये करना है, तुमको वो करना है, तुमको ऐसा करना है, तुमको वैसा करना है। हैप्पी नहीं है किसी से, बेचैनी है, अजीब सी बेचैनी अंदर ही अंदर। परिस्थिति, जॉब, वर्क प्लेस, जॉब तो कर रहे हैं पर उसको मन से स्वीकार नहीं किया है। एक बहुत बड़ा सर्जन, वर्ल्ड रिनाउंड सर्जन, जीवन भर की उसने कितनी सर्जरियां की होगी और कितने लोगों को जीवन दान दिया होगा, रिटायर होता है मेडिकल प्रोफेशन से, फेयरवेल पार्टी रखी जाती है, उसको बोलने के लिए कहा जाता है, वो रोने लगता है। रो क्यों रहे? वो कहता है बचपन से मुझे म्यूजिशियन बनना था, गलती से डॉक्टर बन गया और कभी संतुष्ट नहीं हो पाए, क्योंकि अंदर प्यास एक ही थी, कब संगीत को छेड़ो। नो मैटर आई हैव डन एक्सेलेंट वर्क इन माय प्रोफेशन, आई हैव सेव्ड थाउजेंड्स ऑफ लाइव्स, And yet, there is a feeling of frustration and there is a feeling of suppressed feelings. I couldn't do what I wanted to do in my life. मुझे जीवन में वो बनना था जो मैं बन ही नहीं पाया, कुछ और ही बन गया। पर खुशी इस बात की भी है अभी खुशी कि अब मैं फिर से वो चालू करूंगा जो मुझे करना था बचपन से। एक्सेप्ट नहीं किया है प्रोफेशन को और करे जा रहे उसमें, शायद अंदर से इच्छा कुछ और बात की है। नॉट नेसेसरी कि हर एक को वकील ही बनना है, डॉक्टर ही बनना है, इंजीनियर बनना है, उस बच्चे को कुछ और बनने की इच्छा है। खलील गिब्रान ने अपनी कविता लिखी है, योर चिल्ड्रेन आर नॉट योर चिल्ड्रेन, दे आर फ्रॉम यू बट नॉट फॉर यू। तुम्हारे बच्चे तुमसे है पर तुम्हारे लिए नहीं है। दे आर फ्रॉम यू बट दे आर नॉट फॉर यू, इसलिए अपनी इच्छा होगा उन पर नहीं थोप देना, उसको जो करना है उसका अपनी बुद्धि है, अपना विवेक है, उसका इंटरेस्ट किस में है वो देखना। हमें याद है जब हम सेकंड एमबीबीएस में थे, फर्स्ट ईयर, हमारा एक साथी एक दोस्त आलोक 6 महीने के बाद घर भाग गया, कहता है मैंने करना ही नहीं MBBS। हम लोग दोस्त लोग सब मिलके गए उसके घर, उसको लेके आए, समझाया बुझाया, बहुत समझाया। अगली बार फिर भाग गया, कहा कि मुझे करना ही नहीं है तो मैं क्या करूं। घर वाले इतने परेशान दुखी, उसे वास्तव में करना ही नहीं था, जबरदस्ती डाल दिया था उसे, भाग गया। आज जहां भी है खुश है। हमारा एक दूसरा मित्र था, MBBS हुआ, MD किया, उसके बाद में DM किया कार्डियोलॉजी, मुंबई में था। पर कार्डियोलॉजी में इतने पेशेंट को परेशान हो गया, मुझे नहीं करनी है कार्डियोलॉजी, छोड़ दिया। फिर से बहुत ब्रिलियंट, फिर से एग्जाम दी, फिर से पास हुआ, ऑर्थोपेडिक ब्रांच की, ऑर्थोपेडिक किया। 1 साल करने के बाद उसको भी छोड़ दिया, नहीं करना है मुझे, कुल कूल ब्रांच चाहिए जिसमें कोई इमरजेंसी ना हो। कूल ब्रांच स्किन डर्मेटोलॉजी, उसमें कोई इमरजेंसी नहीं होती। स्किन लिया, फिर स्किन मिला, स्किन किया, कहता है बोर हो रहा है मुझे, स्किन सारे दुखी लोग आते हैं, यहां दाग वहां दाग, इसको हटाओ उसको हटाओ, स्किन को भी छोड़ दिया। अभी अपने गांव में जनरल प्रैक्टिशनर है, टॉप लेवल का जनरल प्रैक्टिस करता है, क्योंकि कुछ नहीं था किसी भी ब्रांच से, जिस ब्रांच के लिए लोग तड़पते हैं वो सारी उसको मिल गई थी, इतना वो ब्रिलियंट था। बट इनसाइड ही वॉज डिससैटिस्फाइड, छोड़ दिया, पर आज खुश है, जो कर रहा है उसमें खुश है। एक्सेप्टेंस पहली चीज जो चाहिए तनाव मुक्ति के लिए, हम स्वीकार कर ले। और स्वीकार अर्थात ये नहीं कि हम बदलेंगे नहीं चीजों को, परिस्थिति आई उसको स्वीकार करना मतलब बदलेंगे नहीं, ऐसा नहीं, बदलेंगे पर एक्सेप्टेंस में पॉजिटिव एनर्जी है। और जो हमको चाहिए ही नहीं उसको हटा दो, देर इज एन ऑप्शन बी ऑलवेज, देर इज एन ऑप्शन बी। पर थोड़ा एकांत लगेगा, थोड़ा चिंतन लगेगा उस तक पहुंचने के लिए। ए बी, बी फॉर बैलेंस, बैलेंस। तालियां उसके लिए बजती है जो रस्सी पर चलते हैं, रास्तों पर चलने वालों के लिए तालियां नहीं बजती। क्यों? क्योंकि वहां पर बैलेंस है। प्रोफेशनल लाइफ, फैमिली लाइफ, बैलेंस। कोई कोई इधर इतने चले गए हैं कि इसके लिए टाइम ही नहीं। एक छोटा सा बच्चा अपने पिता के पास आता है, कहता है पिताजी आप 1 घंटे में कितना कमाते हो? पिताजी कहते हैं 500 रुपीज। पिताजी क्या आप मुझे 300 रुपए दोगे? बोलता है 300 क्या करोगे तुम 300 लेके? मुझे पता था तुम ये प्रश्न क्यों पूछ रहे, जरूर तुमको पैसे चाहिए होंगे खिलौनों के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए। उसको बहुत डांटते, जाओ यहां से, काम करने दो। छोटा सा बच्चा अपने कमरे में जाता है, रोने लगता है, पिताजी को लगता है मैंने थोड़ी ज्यादा ही ज्यादती कर ली, इतना भी मुझे नहीं बोलना चाहिए था, बेचारा छोटा है, चलो चाहिए होंगे उसको कुछ पैसे। पिताजी उसके कमरे में जाते हैं, कहते कितने चाहिए तुमको? वो कहता है 300। पिताजी उसको 300 रुपए देते और फिर वो अपने तकिया के नीचे से 200 रुपए निकालते। पिताजी कहते तुम्हारे पास तो पैसे थे फिर भी मांग रहे? वो कहता है मेरे पास कम थे, अभी 500 हो गए। पिताजी कहते क्या करोगे? वो कहता है ये लो 500 रुपए पिताजी, क्या आप 1 घंटा पहले कल आ सकते हो ऑफिस से? कल मेरा बर्थडे, मेरे साथ 1 घंटा बिता सकते हो? कैन यू स्पेंड 1 आवर विद मी? रिटर्न में ये लो 500, मैं बाद में दे दूंगा। यू हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, व्हाट इज दिस लाइफ इफ यू लव केयर। ऐसा जीवन है कि ये स्वजनों के लिए ही समय नहीं, और भाग रहे और भाग रहे और भाग रहे, किस लिए भाग रहे वही नहीं पता। घर वाले मर रहे, घर से कोई फोन आता है हम ऑफिस में, हम कहते बाद में बात करेंगे, और किसी दूसरे कंपनी का और किसी बॉस का और इसका उसका फोन आता है तो एकदम खड़े होके बात करना चालू करते। घर वालों को रिजेक्ट लिस्ट, कट, बाद में, नो टाइम, मैं बिजी हूं, बिजी कॉल करते हैं। बैलेंस, द सीक्रेट इज बैलेंस। अगर हमें लग रहा है हम कहीं ज्यादा चले गए, वापस आ जाना है बीच में। दिस इज लाइफ, लाइफ इज ऑल अबाउट बैलेंस। ऐसा लग रहा है कि बहुत मटेरियलिज्म हो गया है, ब्रिंग स्पिरिचुअलिटी ना, केवल भाग रहे हैं पागलों जैसे, शांति है ही नहीं, एक पल की शांति नहीं है। मन अगर कोई कहे एक घंटे तक ऐसे बैठ जाओ, 15 मिनट बैठ जाओ, देखो कितनी हलचल होती है मन में, मन स्थिर नहीं है। तीसरा सी, क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी अर्थात रचनात्मकता, वही सुबह उठना, वही अखबार, वही ऑफिस, वही ट्रैवल, वही वापस, वही दिनचर्या इतने सालों से चल रही है, उसमें कुछ भी नया नहीं है। कुछ तो नया करना है, ऐसा कुछ करना है जो आज तक कभी किया नहीं था, जाकर किसी की मदद कर देना, गो आउट ऑफ द वे एंड हेल्प समबडी, बहुत खुशी मिलती है। हम देखते हैं हॉस्पिटल में कितने लोग आते हैं, फ्लावर लेके आते हैं, पुष्प, और सारे पेशेंट्स को बांट के चुपचाप चले जाते हैं, उनका कहीं नाम नहीं, उनका कुछ नहीं, कौन थे वो भी नहीं पता, बस मदद कर दिया और चले गए, एक एप्पल दे देंगे, सबको बांट देंगे, चुपचाप निकल जाएंगे, उन्हें नाम नहीं चाहिए, उन्हें ये भी नहीं अनाउंस करते कि हम आ रहे हैं। एक्ट ऑफ गुडनेस, एक्ट ऑफ गुडविल, आउट ऑफ द वे जाकर कुछ करना। क्रिएटिविटी, राइटिंग, लिखना, म्यूजिक, क्रिएटिविटी, कुछ तो नया करना, कुछ तो ऐसा करना जो आज तक जीवन में कभी किया नहीं था, लर्न न्यू लैंग्वेज, क्रिएटिविटी, लर्न न्यू एक्टिविटी, न्यू हॉबी, गार्डनिंग जो आज तक कभी की नहीं, कुकिंग जो आज तक कभी किया नहीं, लर्न न्यू हैबिट्स, क्रिएटिविटी लानी है। जब तक क्रिएटिविटी नहीं, जीवन नीरस है, वीरस है। खुद ही सोचना है वो कौन सी ऐसी चीज है जो मुझे सीखनी थी पर मैं सीख नहीं पाया, अब सीख। अंग्रेजी में एक किताब है सेंस ऑफ वंडर, अमेरिकन ऑथर ने लिखी है, रेचल कार्सन, उसने लिखा कि मैं अभी 70 वर्ष की हो गई हूं, तब वो किताब उसने लिखी। 70 वर्ष की होने के बाद उसको लगा मैंने बचपन तो जिया ही नहीं, तो उसने एक काम किया, एक 3 साल के बच्चे के साथ दोस्ती की और उसको फॉलो किया अगले 2 साल, जब तक वो बच्चा 5 साल का नहीं होता। जैसा जैसा बच्चा करता वो भी वैसे ही करती, बच्चा घुटनों के बल चलता वो भी घुटनों के बल चलती, बच्चा चीजों से खेलता खिलौने से वो भी खिलौने से खेलती, क्योंकि उसको ऐसा लगा जैसे बचपन मेरा खो गया है। 2 साल उसने वो सब किया और उसके बाद में ये किताब लिखी और कहा कि मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि कितनी सारी बातें मैं मिस कर चुकी हूं बचपन में। विजन ऑफ द चाइल्ड, बच्चा कैसा होता है, उसको हर चीज में ये क्या है वो क्या है, समुद्र के किनारे पर मोती सीप बीनता है, बड़ों को दिस इज वेस्ट ऑफ टाइम, दे नो दिस इज फुलिशनेस, और उसको आश्चर्य है। सेंस ऑफ वंडर, ब्रिंग दैट सेंस ऑफ वंडर इन लाइफ, वो विस्मय का भाव, ये क्या है वो क्या है, आप लोग यहां आए, आश्चर्य, ये कौन बहने हैं और क्यों है, ये क्या है, ये कौन सी प्रदर्शनी है, ये किसके फोटो है, ये चित्र क्या है, इनका लक्ष्य क्या है, इनका स्वार्थ क्या है, चलता कैसे है, क्या कैसे होता है, विस्मय का भाव होना चाहिए। ये तो यंग लोग दिख रहे हैं, ये तो बुढ़ापे में करने वाली बात है, यहां क्या करते हैं, प्रश्न उठने चाहिए, विस्मय, आहा, ओहो। सी फॉर क्रिएटिविटी, डी डिजिटल डिटॉक्स। नेचर की ओर सेंटर होता है, क्या करते हैं उसमें जूस वगैरह पिलाते हैं, सारे टॉक्सिन्स निकालते हैं, और सबसे बड़ा टॉक्सिन कौन सा है, डिजिटल डिटॉक्स, इसको करने की आवश्यकता है। माउंट आबू में मेडिकल कॉन्फ्रेंस थी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ वही एक डिपार्टमेंट की हेड मैडम आए थे, और ट्रेन में जब आ रहे थे उनका मोबाइल गुम हो गया, जब माउंट आबू कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंचे, इतने गुस्से में, मोबाइल इतनी मेन चीज है, मोबाइल चला गया, इतना महंगा 50,000 का मोबाइल गया, और 3 दिन कॉन्फ्रेंस, 3 दिन के बाद उन्होंने अपना अनुभव सुनाया। ये 3 दिन मेरे इतने शांति में बीते जीवन के, आज तक ऐसे 3 दिन नहीं बीते बीते, कोई कॉल नहीं, कोई कुछ नहीं, परम आनंद, अच्छा हुआ हो गया। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी, इतना घेर लिया है इसने, नो मैटर, इट इज वेरी यूजफुल। पर यह आग की तरह है, रोटी भी पकाएगा तो घर भी जला देगा, एक क्लिक और चरित्र का पतन, वन क्लिक और कहां से कहां, कितने युद्ध, कितने युवक बर्बाद हो गए इससे। वीडियो गेम्स बच्चे खेलते रहते, टेररिस्ट का इंटरव्यू हुआ था, कभी पूछा गया था बताओ आप क्या करते थे बचपन में, उन्होंने कहा वीडियो गेम्स खेलते थे टेररिस्ट, कौन से वीडियो गेम, इधर से गाड़ी उधर से गाड़ी, इधर से मारा उधर से मारा। फिर धीरे धीरे इच्छा हुई कि हमारे पास भी बंदूक, पहले प्लास्टिक की बंदूकें थी, और अब बड़े हुए मजा आता है मारने, जो बचपन से बीज बोया गया वीडियो गेम्स के द्वारा, बीच में वो कौन सा आया था जिससे बच्चे मर गए थे, वेल, हाँ वो सारे जो आए थे, ब्लू वेल, ब्लू वेल जो उसमें दिखाते, बस बच्चे वही करते। वीडियो गेम्स आर डेंजरस, इधर से गाड़ी उधर से गाड़ी, इधर से मारा उधर से मारा। उस आतंकवादियों ने कहा कि दीज आर द गेम्स वी यूज टू प्ले इन चाइल्डहुड, इसके लिए बच्चों की तरफ ध्यान रखना है, वो करते क्या है मोबाइल के साथ, इंटरनेट के साथ क्या करते हैं, इज एक्सट्रीमली डेंजरस, जो वो देखते हैं वही करने लगेंगे, चुपके करेंगे पहले। सोशल मीडिया, पहले लड़ाइयां कुरुक्षेत्र के मैदान में होती है, अभी कहां होती है, सोशल मीडिया पर होती है, एक ट्वीट इधर से और दूसरा ट्वीट इधर से और लड़ाइयां चालू, ऑनलाइन अब्यूजेस, लड़ाइयां चालू, टीवी इंटरनेट, गूगल का एक बहुत बड़ा अफसर, उसने लिखा है गूगल के लिए, डू नॉट गो ऑनलाइन विदाउट अ पर्पस, डू नॉट गो ऑनलाइन विदाउट अ पर्पस, पर्पस के साथ ही नेट में घुसना है, पर्पस पूरा हुआ चुपचाप वापस आ जाओ, नहीं तो क्लिक क्लिक क्लिक, चालू कहां से किया और एंड कहां होगा पता ही नहीं। जेल में जो लोग भर्ती है बंद है, पूछो उनको ये कैसे कर लिया तुमने, कहां से सीखा ये सब, इंटरनेट यूट्यूब, वहां से सीखा, क्षणिक वासना, पैशन, एनिमल पैशन, विकर्म कुकर्म दुष्कर्म, इसके लिए घर में जो बच्चे वो क्या देखते हैं उसने उसकी तरफ ध्यान रखना है, व्हाट आर देयर इंटरेस्ट, एंड फॉर दैट वी ourselves should have डिजिटल डिटॉक्स। हमारे जीवन में सुबह से लेकर रात तक कुछ ऐसा समय हो जिसमें हम इस मोबाइल से थोड़ा दूर रहे, कुछ पलों के लिए, कुछ समय के लिए, सुबह रात में सोते समय और सुबह उठते समय कीप ऑफ द डिजिटल डिवाइसेस, ताकि नींद भी अच्छी हो सके, और जो हम करेंगे बच्चे हमको देखकर करेंगे। दो बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, मम्मी आती है कहती है तुम फिर से क्या कर रहे हो तुम दोनों, वो कहते हैं हम मम्मी पापा का खेल खेल रहे हैं, आप दोनों भी लड़ते रहते हो मम्मी का। डिजिटल डिटॉक्स, लाइन डिवाइड करनी है, कितना समय ऑनलाइन रहना है, कितना समय ऑफलाइन, स्क्रीन टाइम कितना है। अभी अभी बैंगलोर निम्हांस में एक लड़की एडमिट हुई, टेक्सटिंग एडिक्शन, एक दिन में 8 घंटा मैसेजेस करती बैठी, अभी टी एडिक्शन छुड़ाने का प्रोसेस चालू है, टेक्सटिंग, मैसेज ही मैसेज, मैसेज ही मैसेज, जितने एक्सपर्ट हो गए दिन रात टेक्स्ट करते रहते, एडिक्शन हो गया आज, इंटरनेट एडिक्शन। अस्पताल में पेशेंट आया मित्र लेकर, बेहोश है, डॉक्टर पूछता है क्या हुआ, मैंने डॉक्टर कुछ नहीं, फेसबुक का मरीज है, 4 दिन से इंटरनेट बंद है। ऑनलाइन का एडिक्शन ढूंढते रहता है व्यक्ति, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन न्यूज, बाय बाय बाय, पुरानी चीज जो आई है अभी तक उसको हाथ भी नहीं लगाया, नेक्स्ट बाय, ढूंढते रहते क्या खरीदू क्या खरीदू। इतना सहज है, बाय का ऑप्शन दबा दी, 4 दिन में चीज घर में। बाइंग भी, ऑनलाइन परचेज भी एक एडिक्शन जैसा। उसके बाद है ई, ई अर्थात एक्सरसाइज। एक्सरसाइज अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो धीरे धीरे ये शरीर बीमार होते जाए। और एक्सरसाइज केवल शरीर की नहीं, फिजिकल एक्सरसाइज, मेंटल एक्सरसाइज, स्पिरिचुअल एक्सरसाइज, तीनों। टाइम निकालना है, व्यायाम, योगासन, प्राणायाम, कुछ भी, किसी भी तरह की, पर एक्सरसाइज इस शरीर को मस्ट है। नहीं तो ये शरीर अगर हाथ से गया तो कुछ नहीं कर सकते, बीमार पड़ो, देखो क्या अनुभव है, अस्पताल के चक्कर काटते रहो। और एक्सरसाइज करते ही कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं हमारे बॉडी में, और जिससे तन बदन में खुशी की अनुभूति होती है। एक नया हार्मोन निकाला है, उसको नाम ही दिया आनंदामाइड, आनंदामाइड, सीरोटोनिन, ये सब निकलते हैं अंदर से और बहुत खुशी का अनुभव होता है, एंड दैट कम्स विथ एक्सरसाइज। इसके लिए टाइम निकालना है रोज। उसके बाद में है एफ, एफ अर्थात फॉरगिव, फॉरगिव अर्थात माफ कर देना। किसको माफ कर देंगे, किसको माफ करेंगे, उन सबको जिन्होंने हमारे साथ बहुत बुरा किया है, इस उनके लिए नहीं अपने लिए, क्योंकि जब तक हमने किसी को माफ नहीं किया है वो कांटा यहां चुभा हुआ है। जो जो हमारे जीवन में हुआ है सब कर्मों का हिसाब है, कार्मिक अकाउंट सेटल हुए हैं। यदि हम ये सोचते हैं आई हैव टू टेक रिवेंज, इसने मेरे साथ ठीक से बात नहीं की थी, इसने मेरा अपमान किया था, अपशब्द बोले थे, ऐसा किया था वैसा किया था, तो वो बात मुझे अशांत कर रखेगी हमेशा। तो सभी फिर से अलर्ट होके बैठेंगे, एक मिनट, रेड लाइट, और कुछ बातें हम जो बताएंगे उसी अनुसार इमेजिन करना है। एकदम स्थिर होके बैठेंगे, चाहे तो आंखें बंद कर सकते हैं। जीवन के इस अनंत यात्रा में आज मैं अपनी आंखों के सामने देखता हूं उन सभी लोगों को जिन्होंने मुझे किसी ना किसी रूप से दुख दिया। वो सभी लोग जिन्होंने अपशब्द बोले, अपमान किया, साजिशें की, मुझे दुखाया, टॉर्चर किया, मैं उन सबको देख रहा हूं और मैं अपने आप को भी देखता हूं कि मेरे अंदर उनके प्रति कैसी भावनाएं, घृणा है, नफरत है, सूक्ष्म बदला है, पर जब तक मैं इनको माफ नहीं कर देता मैं स्वयं भी तो शांत नहीं हो सकता। आज इस पवित्र प्रांगण में बैठकर जहां पर पवित्र ऊर्जा है, पॉजिटिव एनर्जी है, जहां मेरा मन भी शांत है, मेरे जीवन में आए इन सभी लोगों को मैं रहम दिल बनकर क्षमादान करता हूं, बेशर्त समा। और इन्होंने जो कुछ किया वो मेरा ही कार्मिक अकाउंट था, इसलिए अब उनसे मेरी कोई शिकायत नहीं। I forgive them all without any condition, unconditional pardon. जो हो गया सो हो गया, full stop, पूर्ण विराम। कब तक मैं इस बोझ को ढोते रहूं, जैसे दूसरों ने मुझे माफ किया मुझे भी उन्हें माफ करना। अब मैं अपनी आंखों के सामने उन लोगों को देख रहा हूं जिनको मैंने बहुत दुख दिया, बहुत सताया, षड्यंत्र की कंप्लेंट की, जिनकी इंसल्ट की, मदद नहीं की, गॉसिप्स की, कमेंट्स किए। मैं अपनी आंखों के सामने उन सभी को देख रहा हूं मन की आंखों से, हे आत्माओं मुझे माफ कर दो, मैं क्षमा प्रार्थी। मन शांत और हल्का हो गया, स्थिर हो गया। ओम शांति। आंखें खोलें। ये दो अभ्यास है, माफ करना, माफी मांगना। जब तक ये काम हम जीवन में नहीं करते बदला चालू रहे। हमें याद है हमारे ओपीडी में एक बहन आई थी, डिप्रेशन में थी, विदेश की थी, इतनी बड़ी फाइल थी, इतने सारे एंटी डिप्रेशन थे, कितने साइकेट्रिस्ट चेंज किए, और विदेश के लोग तो डायरेक्ट बात करते भारत के लिए जैसे नहीं, आई एम इन डिप्रेशन, ये मेरी डिप्रेशन की गोलियां हैं, प्लीज इंक्रीज द डोज, डॉक्टर सीधा बोलते, प्लीज इंक्रीज द डोज, माई डिप्रेशन हैज इंक्रीज्ड। हमने देखा इतनी उसकी सारी फाइलें, इतना हाई हेवी डोज चालू है, एंटीसाइकोटिक्स, एंटी डिप्रेसेंट, एंग्जियोलाइटिक्स, ट्रैंक्विलाइजर, सब कुछ चालू है, फिर भी कहती है कि ऐसा हो रहा है, क्या कारण है। थोड़ा सा स्पिरिचुअल काउंसलिंग के सेशंस हुए और बाद में पता चला 30 years back उसको किसी से प्यार था, सम मैन शी यूज्ड टू लव, और उसकी जो छोटी बहन थी उस छोटी बहन ने उसके साथ शादी कर दी, पर इसको अपनी बहन से भी बहुत प्यार था, और उसके मन में था मेरी बहन ने जैसे मेरी वस्तु छीन ली है, पर कुछ कह भी नहीं सकती थी क्योंकि बहन है। पर वो बदले का सूक्ष्म भाव उसके मन में ऐसा समा गया, इतना वो दब गया अंदर, और बाद में उसने कोई आध्यात्मिक संस्था को ज्वाइन किया, 30 साल से उस संस्था में है, आध्यात्मिक प्रवचन करती है, सब कुछ करती है, पर वो अंदर सूक्ष्म भाव अभी भी दबा है कि मेरी बहन ने मेरे साथ ये किया, माफ नहीं किया। तो हमारे पास जब आई तो उसको कुछ विधियां सिखाई गई, कैसे विजुलाइज करो और माफ कर दो उसको, और उसने रोज करना चालू किया और धीरे धीरे उसका वो डिप्रेशन खत्म हुआ, सब जा। एंड शी गॉट रिड ऑफ ऑल द एंटी डिप्रेसेंट्स, क्योंकि मेन कारण वहां था, बहुत डेप्थ में था. शायद उसको भी पता नहीं था ये कि ये मेरे अंदर है, और वो निकला बाहर, यही वो कारण है. पहले तो कहती है कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कोई है ही नहीं, कोई ऐसी बात ही नहीं हुई जीवन, माना ही नहीं इतना समय. बाद में ये सबसे गहरे जो बात थी वो निकली. 30 साल हो गए उस बात को, 30 साल से एंटी डिप्रेशन खा रही है. वह क्योंकि शी हैज नॉट फॉरगिवन. एक विदेश की महिला ने अनुभव लिखा है, शी वॉज फिजिकली असॉल्टेड बाय अ मैन. और फिर वो बहन, वो महिला डॉक्टर बनी, सर्जन बन गई. और एक रात कई वर्षों के बाद एक बुलेट इंजरी का पेशेंट आया उसके क्लिनिक में, रात को उसके हॉस्पिटल में. आसपास वही एक बड़ा हॉस्पिटल था, और उसने देखा उसको, दैट वॉज द सेम मैन. क्या करूं अब, मरने दो इसको, सब तो बच गया था. समझ नहीं आया उसको, व्हाट शुड आई डू. चर्च था, चर्च में गई, देखा जीसस क्राइस्ट टंगा हुआ. पूछा वो, लॉर्ड व्हाट शुड आई डू, टेल मी, माफ कर दो उसको, बचाओ कि मरने दो. और उसके सामने एक दृश्य आया, जीसस क्राइस्ट वहां से हट गया, और जैसे जीसस क्राइस्ट की जगह वो वहां खड़ी हो गई. और वो कहती है, फॉरगिव देम फॉर दे नो नॉट व्हाट दे आर डूइंग. और उसको लगा कि मैं भी जैसे वहां सूली पर हूं, और मुझे भी उसको माफ कर देना है. शी केम बैक, उसको ऑपरेट किया, ही गॉट सेव्ड. और बाद में जब होश में आया और उसे सब पता चला, हाथ मकलानी से भर गया, गिल्ट कॉन्शियसनेस, माफी मांगी, परंतु जीवन भर वो उसका सहयोगी बना. हमें माफ कर देना है, चाहे किसने कुछ भी किया, उनके लिए नहीं, अपने लिए नहीं, तो मैं खुद अशांत रहूंगा अगर मैंने उसको माफ नहीं किया. और गलतियां हर एक से हुई, हमसे भी बहुत हुई है. एक फिलोसोफर लिखता है, मैं तुमको इसलिए सिखाता हूं, इसलिए नहीं कि मैं तुमसे ज्यादा जानता हूं, इसलिए कि गलतियां तुमसे ज्यादा मैंने की, इसलिए तुमको सिखाता हूं. तो क्योंकि उसके बाद है जी फॉर ग्रेटिट्यूड. ग्रेटिट्यूड अर्थात धन्यवाद. दिनचर्या के 10 मिनट निकालने हैं, बैठना एकांत में, और वो सारे लोगों को याद करो जिन्होंने हमारे जीवन में हमारी मदद की. टीचर्स, पेरेंट्स, सबको धन्यवाद. मन से, दिल से अहोभाव, मन से ग्रेटिट्यूड, मन से थैंकफुलनेस, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, सबको धन्यवाद. 10 मिनट भी अगर ये कर दिया, एकांत में बैठकर, छत पे चले जाओ, गार्डन में चले जाओ, याद करो जीवन में वो कौन कौन लोग थे जिन्होंने हमारी मदद की, मन शांत हो जाए, वो जो टेंशन है वो मिट जाएगा. ग्रेटिट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, बस धन्यवाद से भर देना है. ग्रेटिट्यूड में बहुत एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव ऊर्जा है उसमें. उसके बाद है एच. एच अर्थात हॉबीज, हैबिट्स. एक हॉबी जो सबसे अच्छी है वो है, पहले भी कहा, लिखना, कविता लिखना, कुछ रचनात्मक लिखना, अनुभव लिखना, जीवन के अनुभव. कितने लोगों ने अपनी जीवन कहानियां लिखी है, उसको पढ़कर बाकी की आने वाली पुश्तों की जीवन बदल गई. लिखते रहना रोज. डायरी कौन कौन लिखता है आप में से, कोई लिखता है डायरी? नहीं. ये बहुत अच्छी हैबिट है, रोज की डायरी लिखना, आज क्या क्या हुआ, सुबह से लेकर रात तक. आज सुबह हम वो गए ऑफिस में, गए इधर गए, शाम को ब्रह्मा कुमारी में प्रोग्राम था, वहां जाके बैठे, पता नहीं क्या चालू था, 1 घंटा अच्छी अच्छी बातें सुनाई तो पड़ रही थी, पर ठीक ठाक था, वो भी लिख देना उसमें. थोड़ा सा बोर भी हो रहे थे, नींद भी आ रही थी, परंतु भोजन की सुगंध भी आ रही थी, सब लिख देना उसमें, जो जो मन में आता है सब उड़ेल देना उसमें, अपनी डायरी में. ये भी लिख देना, आज मुझे उसने ऐसा कहा और आंसू आ गए। नहीं करना चाहिए था उसने। बॉस के पास लीव एप्लीकेशन लेके गई, रिजेक्टेड, वापस आ गया। हर संडे अपनी डायरी को देखना है। तो संडे जब देखेंगे, अरे इतनी छोटी सी बात और मैं रो भी, ये कोई रोने की बात है? उस समय वो बहुत बड़ी लगती है, पर कुछ दिनों के बाद छोटी हो जाती है। बड़ी बात को छोटा करना और छोटी बात को खत्म, ये कला को सीखना है। और हम क्या करते, जो है ही नहीं उसको छोटा, और जो छोटा है उसको बड़ा बना दो, और दिन रात सोचते रहते उसके पास कैसे होगा कैसे होगा। लिखने की डायरी राइटिंग, फाउंडिंग फादर ऑफ अमेरिका बेंजामिन फ्रैंकलिन, उसको एक आदत थी, रोज रात में अपना चार्ट लिखता था। 13 पॉइंट्स थे उसके, कि आज मैंने झूठ तो नहीं बोला, किसी को दुख तो नहीं दिया, कर्टसी रही, मेरा बिहेवियर टेम्परामेंट हाउ वाज आई, किसी के बारे में। ही यूज्ड टू राइट एवरी डे हिज डायरी, उसके ऑटोग्राफी में लिखा हुआ है, उसके पॉइंट्स लिखे हुए, यू कैन गो एंड सर्च, पूरा ऑडियो बुक अवेलेबल है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ बेंजामिन फ्रैंकलिन। सेल्फ चेकिंग है। उसके बाद है आय अर्थात इनक्विजिटिवनेस, जिसकी थोड़ी सी हमने चर्चा की। इनक्विजिटिवनेस अर्थात उत्कंठा, क्या है जानू और क्या है। जैसे हम बचपन से ही एक इच्छा थी, ये सब क्या है जानने की, धर्म क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, रिलीजन क्या है, गॉड क्या है। और हमें नहीं लगता इस संसार की ऐसी कोई संस्था होगी जिसमें हम नहीं गए। ऑलमोस्ट एवरी इंस्टीट्यूशन, ईस्टर्न वेस्टर्न, सारी चिन्मय मिशन, रामकृष्ण मिशन, योगा द सत्संग सोसाइटी, आर्ट ऑफ लिविंग, माता अमृतानंदमयी, सब 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 जो जो दिखता था उन सबके पास जाते थे। सब लास्ट में इधर पहुंचे। इनक्विजिटिवनेस, उत्कंठा, जानने की इच्छा, क्या है, ये कौन लोग है, क्या कर रहे हैं, इनका स्वार्थ क्या है, किस लिए करते हैं। ट्राई टू नो। उसके बाद है जे अर्थात जर्नी, नए नए जगह पर जाना, ज्ञान बढ़ता है। चेंज ऑफ प्लेस, माइंड रिलैक्स हो जाता है। हम देखते हैं कई लोग माउंट आबू में आते हैं, आप में से कितने लोग आए हैं माउंट आबू? कई आए। वहां का जो वातावरण, वो प्राकृतिक सौंदर्य, कितने विरोधी लोग आए, जैसे आए शांत हो गए, क्योंकि वायुमंडल ही ऐसा है। एक पुलिस कमिश्नर आए थे, चेन स्मोकर, तो बहन ने कहा कि ये स्मोकिंग तो हमारे कैंपस में अलाउड नहीं है। उसने कहा नहीं तो मैं नहीं आऊंगा, मुझे तो चाहिए। तो बहन ने कहा ठीक है, चलो जब भी आपको स्मोकिंग की इच्छा हो मुझे बताना, गेट के बाहर, कैंपस के बाहर लेके जाके स्मोकिंग करना। पहुंचे शांतिवन, इतना बड़ा कैंपस, 100 के ऊपर डिपार्टमेंट है, वहां पे हॉल है, 25,000 से ज्यादा लोग एक हॉल में बैठ सकते विदाउट पिलर्स को हॉल। पहला दिन शाम को कमिश्नर साहब कहते हैं, बहन बाहर लेके गई पी के वापस। दूसरे दिन सुबह मेडिटेशन में बैठे, मेडिटेशन किया, फिर थोड़ी स्पिरिचुअल क्लासेस वगैरह हुई, पर दोपहर में फिर से लेके गई। शाम को फिर तीसरा दिन फिर मेडिटेशन, और फिर हिम्मत नहीं हुई बहन को बोलने की। सोचा ये मैं क्या कर रहा हूं, कैसा वायुमंडल है, इतने हजारों लोग हैं यहाँ पे, हजारों युवक, हजारों कुमार, इतनी पावर है यहाँ पर इस स्थान में। और एकदम से उनको लगा कि आई शुड नॉट डू दिस। और चौथे दिन तो संकल्प ही कर लिया, बस यही छोड़ रहा, और हमेशा के लिए छोड़ दिया। नो विड्रॉल सिम्टम्स, कुछ नहीं, छोड़ा तो छोड़ दिया। छोड़ने को लोगों को रिहैब सेंटर में रखते हैं, फिर भी छूटता नहीं है, छह महीने रहते हैं फिर भी नहीं छूटते। जस्ट लेट इट वंस एंड फॉर ऑल। दैट इज द पावर ऑफ एटमोस्फियर, स्थान को बदलो। नई जगह जाओ, किसी मंदिर में जाओ, किसी प्राकृतिक स्थान में जाओ, किसी आध्यात्मिक केंद्र में जाओ, ऐसी जगह पर आओ जैसे आप यहां अभी बैठे हैं। दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी प्लेस, यहां दिन रात सेवाएं होती रहती है, यहां पर सुबह ज्ञान चलता है, यहां सुबह मेडिटेशन होता है, प्योर एनर्जी है यहाँ पर। ये चित्र में कितनी प्योर एनर्जी है, जो स्लोगन लिखे हुए हैं एक एक स्लोगन में कितनी एनर्जी है, प्योर एटमॉस्फेयर है यहाँ। चाहे ये स्थान या कोई और भी स्थान, एवरी संडे एवरी सैटरडे गो आउट जब भी समय मिले, या एवरी इवनिंग गो आउट जब भी समय मिले। स्थान चेंज होते ही एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है माइंड, सो मेक इट अ पॉइंट टू सीक डिफरेंट प्लेसेस जर्नी। उसके बाद है के कीप फोकस्ड। मल्टीटास्किंग अच्छा लगता है ऊपर से, बट वन हैज टू स्टे फोकस्ड, वन हैज टू स्टे फोकस्ड। अगर कुछ अचीव करना है जीवन में, फोकस चाहिए हमारा माइंड। अगर डिवाइडेड है, कुछ भी नहीं कर पाते, ये भी करूं वो भी करूं, ये भी करूं वो भी करूं, शेक्सपियर के हैमलेट जैसी सिचुएशन, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। स्टे फोकस्ड, टेक अप वन आइडिया, थिंक ऑफ इट, ड्रीम ऑफ इट, मेक दैट आइडिया योर लाइफ, लेट योर मसल सोल एवरीथिंग थिंक अबाउट इट, लेट दैट आइडिया डीपन इन टू यू, एंड दिस इज हाउ द स्पिरिचुअल जायंट्स आर प्रोड्यूस्ड, विवेकानंद ने कभी कहा है। एक आइडिया बस उसका ही सोचते हो, फोकस्ड, फोकस होगा तो सक्सेस होगा। डिवाइडेड माइंड है, कुछ भी नहीं कर पाते। एल, एल अर्थात लव यूर सेल्फ। इंग्लिश में एक शब्द है एफ एल वाई, फर्स्ट लव यूर सेल्फ। अपने आप से प्रेम करो, अपने ऊपर दया करो, अपने ऊपर कृपा करो। हम अपने आप से प्यार नहीं करते। उदाहरण इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, उदाहरण सेल्फ विक्टिमाइजेशन, मेरी वजह से हुआ, मैं नहीं रहना चाहिए था, हमेशा मेरी वजह से सब खराब होता है। अपने आप को दोषी ठहराते रहते हैं, ये इसकी डेथ हो गई मेरी वजह से डेथ हो गई, मुझे करना चाहिए था। खुद को ही विक्टिम बना के रखा है, इसको कहते हैं साइकोलॉजी में प्लेइंग द विक्टिम कार्ड, सेल्फ विक्टिमाइजेशन या इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का भाव है या कंपैरिजन है, ये सब मेरे से आगे है, मुझे नहीं आता है, मेरी बुद्धि इतनी नहीं है। और बच्चों में भी वही इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स बचपन से ही है, और बचपन के संस्कार अभी बड़े हो गए फिर भी वो इंफीरियोरिटी चल रही है। जैसे दूसरे में किसी को अच्छा गुण दिखे, किसी को अच्छा भाषण करते हुए देखो तो लगता है मेरे को नहीं आता, किसी को अच्छा खेलते हुए देखते हो तो मुझे नहीं आता है, इंफीरियोरिटी है। और जिस बच्चे में इंफीरियोरिटी होती है वो बढ़ नहीं पाते, और शायद हमारे अंदर भी वो इंफीरियोरिटी है कहीं ना कहीं। न्यूनगंडता, हीनता के भाव, अपराध के भाव, गिल्ट कॉन्शियसनेस, मैंने पाप किया है, मैंने पाप किया है, मैंने पाप किया है, मेरे से गलती हो गई। आधी रात को चर्च में दरवाजे में थक थक होती है, फादर दरवाजा खोलते हैं, कौन? वार्ड बॉय आया है, कहता है नर्स आपको फोन कर रही है, फोन लग नहीं रहा है, एक बार बात करो। नर्स से बात करते फादर, फादर को नर्स कहती है क्या आप रात को इस समय हॉस्पिटल आ सकते हैं, एक पेशेंट बस मरने ही वाला है थोड़े देर में, आप उसके साथ बैठ सकते हो? क्रिश्चियन धर्म में डेथ के मोमेंट में कोई ऐसा धर्म गुरु आके बैठे, ऐसी मान्यता है, बहुत अच्छा होता है। तो फादर कहते ठीक है मैं आ रहा हूं, फादर जाते हॉस्पिटल पहुंचते, तूफानी रात है, बहुत बारिश हो रही है, फिर भी जाते पेशेंट के कमरे में जाते, और पेशेंट इतना इरिटेबल है, कहता है भागो यहां से, जाओ यहां से, मुझे कोई नहीं चाहिए। और अभी बस हालत खराब है, ब्रेथलेस है, फिर भी क्रोध में है। फादर साहब नहीं बताते, सोचते तो क्या करूं, बारिश इतनी हो रही है, थोड़ी देर बैठता हूं। फिर से अंदर जाते, फिर से पेशेंट के साथ बैठते, वो फिर से क्रोध करता है, भगाते हैं, बारिश हो रही है, फादर सोचते थोड़ी देर और बैठो, फिर अंदर जाते, तब तक वो शांत हुआ। कहते बोलो क्या है, क्यों ऐसे कर रहे हो? वो कहता है फादर मुझे आपके सामने गुनाह कबूल करना है, 30 साल पहले मैंने एक ऐसा पाप कर दिया था, अब तक भूला नहीं हूं, कानून की नजरों से बच गया हूं पर जमीर की नजरों से कैसे बचूं? क्या किया तुमने? वो कहता है कि मैं रेल में गार्ड था और एक बार दारू पी ली और गलत वो दिखा दिया। वहां से कार आई थी, उसमें एक माँ उसके दो बच्चे थे, माँ गाड़ी चला रही थी, दो बच्चे पीछे थे और वो तीनों के तीनों मर गए और मैंने अपने आप को छुपा लिया। ये गिल्ट कॉन्शियसनेस मेरे अंदर अभी तक है कि मेरी वजह से तीन लोगों की मौत हो गई थी और आज मैं आपके सामने ये स्वीकार करता हूं। फादर कहते हैं वो कौन सा स्टेशन था, वो कहता है ये स्टेशन था। कौन सी तारीख थी, कौन सा समय था, वो कहता ये समय था, ये तारीख थी। फादर कहते हैं उस कार में एक चौथा लड़का भी मौजूद था, चौथा व्यक्ति, छोटा सा बच्चा, वो नहीं मरा था और वो मैं हूं और मैं तुमको उन तीनों के लिए माफ करता हूं। तब कहीं जाकर शांति से शरीर छोड़ता है। On behalf of my mother and two brothers, I forgive you at this moment unconditionally. तब कहीं जाके वो शरीर से भाग जाती है आत्मा। अपने से ही प्रेम करना है, अगर गलतियां हुई है माफी मांग लो और मुक्त हो जाओ। गलती हुई है पश्चाताप करके निकल को बाहर निकल के बाहर आ जाओ। उसके बाद है एम मोटिवेट योरसेल्फ। अगर गिर जाओ जीवन में खुद खड़े हो जाओ, कोई दूसरा नहीं आने वाला है, खुद ही खुद को उठाना है। इंतजार नहीं करना है कोई आए और मुझे प्रेरणा दे इस शब्द से बोले। जितनी बार गिरो नन्ही चीटी जब दाना लेकर चढ़ती चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। गिरे फिर उठो, हिम्मत नहीं हारनी है, कुछ भी हो जाए कैसी भी परिस्थिति आए, वो अनुरिमा सिम्मा सिन्हा पैर कट गए पड़ी रही एम्स अस्पताल में कितना समय, फिर भी हिम्मत बांधी और माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया। फर्स्ट पैरालाइज्ड लेडी टू क्लाइम बाय सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ मोटिवेशन, मोटिवेट योर सेल्फ एन। उसके बाद है एन, एन अर्थात नेचर, प्रकृति। प्रकृति किस किस को पसंद है, सबको। प्राकृतिक सौंदर्य जहां है, पर्वत जहां है, नदियां जहां है, ऐसे स्थानों पर जाना है रोज, जहां पर माइंड फ्रेश हो जाए। जितने बड़े बड़े लेखक हुए, जितने कवि हुए, संगीतकार हुए, सबको प्रकृति से प्यार था। प्रकृति की गोद में जाके बैठते थे और कलाकृतियां निर्माण करते सीखने। उसके बाद है ओ ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिव थिंकिंग। वर्स्ट सिचुएशन में भी पॉजिटिव थिंक किया जा सकता है। वर्स्ट सोचो, इसमें पॉजिटिव क्या है, कुछ भी पॉजिटिव नहीं दिख रहा, कुछ तो छिपा है जो उसको ढूंढना। क्यू, क्विट अ बैड हैबिट, एक बुरी आदत को छोड़ना है। अपने आप ही डिसाइड करो मेरी कौन सी आदत है। एक आदत है रोने की आदत। रोना किसको आता है, बहुत ज्यादा भाइयों को कम आता है, माताएं और दर ज्यादा आता है। बात बात में रोना, आंसू की तो टंकी यहां पर रखी हुई है, बटन दबाने की देरी है, रिमोट उसके हाथ में दिया है, उधर से दबाया किधर से चालू, दबाने की भी जरूरत नहीं, वैसे ही बहते दिन रात बहते रहते। अंग्रेजी में एक शब्द है HSP, हाईली सेंसिटिव पर्सन, HSP। HSP जो होते हैं बात बात में रोते हैं, बात बात में बुरा लगता है, रूठते हैं, रूठना मनाना यही करना पड़ता है, बड़ा मुश्किल है उनके साथ। वो आदत है, संकल्प करो इससे मुझे मुक्त हो, फिर विधि ढूंढो कैसे ढूंढो कैसे मुक्त हो। उसके बाद है आर रिलेशनशिप, जो रिलेशनशिप से हमारे सबसे बड़ा तनाव का कारण वो है रिलेशनशिप। कोई भी झुकने को तैयार नहीं। एक वीडियो बड़ा अच्छा वीडियो है, एक पति है जो बर्तन घिस रहा है, तुम देखा होगा आपने, कईयों ने देखा होगा, उसको पूछा जाता है आपके पास दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन ए आपको अपना सारा जीवन अपनी पत्नी के साथ बिताना है, ऑप्शन बी वो कहते हैं ऑप्शन बी ऑप्शन बी ऑप्शन आई चूज ऑप्शन बी। अभी बताया कि ये क्या है, उसके पहले कहता है आई चूज ऑप्शन बी ऑप्शन बी ऑप्शन बी। संबंध टकराव, दूरी, कड़वाहट, लड़ाई, झगड़ा, कोल्ड वॉर, वो उधर आता है वो उधर देखता है, संघर्ष है संबंधों। अंग्रेजी में कहावत है इन द बैटल ऑफ ईगो द विनर इज द लूजर इज द विनर इज लूजर, अहंकार के युद्ध में जो जीतता है वो हारता है, हार जाओ हार में ही जीत। अपने रिलेशनशिप को थोड़ी स्टडी करनी है, क्या है इसमें, क्यों डिस्टर्बेंस। उसके बाद है एस साइलेंस एंड सॉलिट्यूड, मौन और एकांत। रोज की दिनचर्या में कुछ समय मौन का निकाले और एकांत का निकाले। टी टाइम मैनेजमेंट, सुबह सुबह प्लानिंग करनी है आज मुझे क्या क्या करना है, प्रायोरिटाइजेशन इंग्लिश में कहते हैं, टाइम बॉक्सिंग टाइम बफरिंग, इतने से इतने बजे तक क्या करना है उतने से उतने बजे तक क्या करना है, प्लानिंग करके रखनी है अपनी। अर्ली मॉर्निंग में उठते ही थोड़ी प्लानिंग करनी है, फिर कूदना है उसमें दिनचर्या। यू अंडरस्टैंडिंग यूर सेल्फ एंड अंडरस्टैंडिंग अदर्स, दूसरों को समझना है क्या है। हम ये समझते हैं दूसरे मुझे समझे, पर हमने क्या दूसरों को समझने की कोशिश की, छोटे बच्चों को समझने की कोशिश की, पत्नी को पति को समझने की कोशिश की, कभी नहीं, शायद नहीं। इसलिए तो इतनी दूरियां बढ़ गई, इतना डिस्टर्बेंस हो रहा है लाइफ में कि वही घूमते रहता है मन में। बिकॉज वी ऑलवेज हैव ब्लेम फिलोसॉफी, तुम्हारी वजह से तुम्हारी वजह से तुम्हारी वजह से, ही इज रॉन्ग, कोई छुपने कोई तैयार नहीं। वी विजुअलाइजेशन, ये बहुत पावरफुल टूल है विजुअलाइजेशन, मन की आंखों से देखना, जैसे अभी अभी हमने जो योग के प्रयोग किए देखा अपनी आंखों से, ये लोग इन्होंने मुझे दुख दिया माफ, इनको मैंने दुख दिया माफी मांग ली, अपने जीवन की यात्रा मैंने क्या की, कहां हूं अभी, मन की आंखों से देखना विजुअलाइज करना, या फिर जो पाना है जीवन में उसको विजुअलाइज करना कि मुझे ये प्राप्त करना है ये मिलना चाहिए। उस दिन भी हम कॉलेज में सुना रहे थे, हमारे कॉलेज के जो डीन थे डॉक्टर आईचित ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, जब हम फर्स्ट एमबीबीएस में थे उनका लास्ट डे था, फेयरवेल पार्टी चालू थी, उनका फेयरवेल स्पीच में उन्होंने कहा कि 1960s में मैं इस मेडिकल कॉलेज में जीएमसी नागपुर में मैंने एंट्री की, और जिस दिन एंट्री की मेडिकल कॉलेज में मैंने एक विचार अपने मन में लिया, एक संकल्प कि जिस मेडिकल कॉलेज में मैं पढ़ूंगा उसी कॉलेज का एक दिन डीन बन जाऊंगा। फर्स्ट एमबीबीएस का लड़का ये विचार कर रहा है, रैगिंग का डर, उस बीच ये विचार, उस विचार को देखता रहा फर्स्ट एमबीबीएस, सेकेंड विजुअलाइजेशन कलराइजेशन पिक्चराइजेशन मेंटल इमेज बनाता रहा, और धीरे 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 वो साकार हो गया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, विचार जो हम डालेंगे प्रकृति और विचार का रिएक्शन होगी, घटनाओं का निर्माण होगा। हमारे ओपीडी में पेशेंट आते हैं, पिताजी आते हैं, उसकी बेटी भी एडमिट है, बच्चे का डायलिसिस चालू है, मैं गरीब हूं मैं गरीब हूं मैं गरीब हूं मैं गरीब हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, और तीसरा एडमिट हो जाता है और गरीबी आती है। हमारे साथ ऐसा ही होता है, जो सोचोगे वो होगा, मेरा ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। थॉट एटमॉस्फियर रिएक्शन घटनाओं का निर्माण, क्या हम सोच रहे हैं। इतना चौड़ा रास्ता है, एक पत्थर रखा हुआ है, मैं साइकिल से जा रहा हूं, साइकिल आराम से निकल सकती है, पर मैं सोचता हूं मुझे उस पत्थर से नहीं टकराना है, मुझे उस पत्थर से नहीं टकराना है, मुझे उस पत्थर से नहीं टकराना है। गाड़ी अपने आप साइकिल उधर जा रही है, मुझे उस पत्थर से नहीं टकराना है, नहीं टकराऊंगा, नहीं टकराऊंगा और टकरा दूंगा। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वही होता है, क्योंकि सोच ही निगेटिव है। डब्ल्यू वेकिंग एंड वॉकिंग, सुबह सुबह उठने की आदत डालनी, अर्ली मॉर्निंग आवर्स। वहां पे माउंट अबू में उठने का टाइम ऑल ओवर वर्ल्ड जो इंस्टीट्यूशन है 3:30 बजे का, पर वहां तो लोग 2 बजे से चालू हो जाते हैं मेडिटेशन, मॉर्निंग मेडिटेशन। उसके लिए सुबह रात को जल्दी सोना पड़ेगा ताकि उठ सके और मेडिटेशन कर सके। और दूसरा है वॉकिंग, चलना। कौन कौन वॉक करता है? और बाकी इधर टाइम नहीं है, योगा करते हैं। योगा करो, वॉक करो, पर वॉक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। सुबह सुबह वॉकिंग के लिए निकल जाओ। अमेरिकन ऑथर ने अपनी जीवन कहानी लिखी है, जब मैं यंग था पिताजी के साथ झगड़ा हो गया, रात भर झगड़ा चला। सुबह पिताजी ने कहा, एक तो घर में तुम रहोगी या मैं। मुझे भी जोश आ गया, लेखक ने लिखा, मैं घर छोड़ के चला गया। और घर छोड़ के जब गया, निकलने के बाद पता चला जेब में तो पैसे ही है। और सुबह का समय 4 बज रहे थे, क्या करूं, वॉकिंग। वॉकिंग करता गया करता गया करता गया, सूर्योदय हुआ, फ्रेश एयर, चिड़ियों की चहचहाट। और करते 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 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर और जाते जाते पता चला गलती तो मेरी है, माफी तो मुझे मांगना चाहिए। वापस आता, ये उसने लिखा बेनिफिट्स ऑफ वॉकिंग, ये काम हो गया। क्या होता है, सुबह सुबह माइंड फ्रेश हो जाता है। कोई तो लेक्चर ले लो, स्पिरिचुअल क्लास, कोई लेक्चर, ईयरफोन लगाओ एंड गो फॉर वॉकिंग, लॉन्ग वॉक, वापस आ जाओ। आने तक मन का मौसम बदल जाएगा, माइंड फ्रेश हो जाएगा, जो रात को जो तनाव था वो हट जाएगा। पर सुबह उठने की एक शर्त है, जल्दी सोना पड़ेगा। 12 बजे सो रहे सुबह नहीं उठ पाएंगे, 11 बजे सो रहे सुबह नहीं उठ पाएंगे, वो एक शर्त। अर्ली मॉर्निंग वेकिंग एंड वॉकिंग, डब्ल्यू एक्स, एक्स अर्थात एक्सरे, अपना एक्सरे करना है। इज देयर एन इमोशनल फ्रैक्चर, इमोशनल डिसलोकेशन, रिलेशनशिप फ्रैक्चर, कुछ तो नहीं है गड़बड़। अपनी चेकिंग खुद करनी है, कहां गड़बड़ चल रही है जीवन। वाई योग निद्रा, जेड जी अर्थात एंथुजियाज्म, हर कार्य खुशी खुशी से करना है जीवन। वाई अर्थात योग निद्रा, हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट योग निद्रा, 1, 2, 3, 4, 5। योग निद्रा एक टेक्निक है स्लीपिंग की, इस पर विशेष कॉमेंट्रीज बनी हुई है, बहुत सारे साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इनसोम्निया, अनिद्रा को ट्रीट करने की। रात को सोए कैसे, 8 स्टेप्स है उसकी। बिस्तर पर लेट जाने के बाद क्या करें, एक दो बातें बता रहे, बाकी यू कैन गो एंड रीड अबाउट इट, उसकी कॉमेंट्रीज है। स्लीप कैसे करें, सो जाओ, शरीर को शिथिल छोड़ दो, पहला। सेकेंड, फोकस ऑन ब्रीथिंग। थर्ड, रोटेशन ऑफ कॉन्शियसनेस, पूरी चेतना को शरीर में घुमाना, अंगूठे को देखना रिलैक्स, घुटनों को देखना रिलैक्स, पेट को देखना रिलैक्स, सांसों को रिलैक्स, जैसे शवासन, उसका एक भाग। शवासन इज नॉट योग निद्रा, बट शवासन इज अ पार्ट ऑफ योग निद्रा। उसके बाद में एक पावरफुल थॉट लेना है माइंड में। कोई अल्कोहलिक है, विचार करेगा आज से मेरी दारू छूट रही है। स्मोकर है, ये उदाहरण दे रहे हैं, वैसा कुछ भी लिया जा सकता है, एनी थॉट जो बहुत पावरफुल है, जिससे हमें छूटना है, और वो थॉट के साथ उसको फिर विजुलाइज करना है, देखना है, हाँ मैंने छोड़ दी, हाँ वो हो गया, मुझे कुछ बनना है, पढ़ाई कर रहे, IAS की एग्जाम दे रहे, देख लेना है कि मैं बन चुका क्रिकेटर, स्पोर्ट्समैन तो ये सब करते हैं, देख लेते हैं पहले मन की आंखों से कि मैं जीत गया हूं, मैं जीत गया हूं, मैं जीत गया हूं, और वो जीत जाते। विजुअलाइजेशन क्रिएट कर रहे, विजुअलाइजेशन करते करते सो जाना, सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। तो दीज आर 26 फ्यू मिनट्स, फिर से अलर्ट होके बैठेंगे। रिलैक्स कर देंगे बॉडी लास्ट सेशन, उसके बाद में आप सबके लिए भोजन तैयार है। मन को शांत कर देना है। ये जिंदगी मुझे कहां ले जा रही है, इस जिंदगी का साथ निभाते निभाते अब निश्चिंत होकर बेफिक्र होकर इसको जीना है, इसी में जीवन की खुशी है, जीवन का आनंद है। तो स्वयं को रिलैक्स करते और निश्चिंत होकर बैठे आत्माभिमानी स्थिति।
मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, मनाना फजूल था, मनाना फजूल था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां। मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया।
मेरा सभी तनाव समाप्त हो गया। मन को संकल्प देंगे, मैं शांत हूँ, स्वस्थ हूँ, एकाग्र हूँ, हल्का हूँ, निर्भार हूँ, निर्बोझ हूँ। मन फिर से स्थिर हो गया, जैसे मन का कोई बोझ उठ गया। मेरे दोनों हाथों से शक्तिशाली ऊर्जा मुझ में आ रही है, दोनों हाथों से पॉजिटिव ऊर्जा
इन दो आत्माओं को जा रही है। मैं अदम्य शक्ति से भरपूर, दिव्य चेतना, सच्चित आनंद स्वरूप, आत्माभिमानी स्थिति, मैं आत्मा उस परमात्मा की संतान हूं। मेरे पिता प्रेम के साथ, शांति के साथ, उस शिव परमात्मा से शांति की किरणें मुझ में आ रही। मेरे जीवन का सारा व्यर्थ समाप्त हुआ, सारा नेगेटिव भस्म हुआ, सारा गिल्ट कॉन्शियसनेस, सारा स्ट्रेस, सारा टेंशन, एक नवीन जीवन की शुरुआत। एंड टुडे आई बिगिन अ न्यू लाइफ, न्यू एंथुसियाज्म, न्यू एनर्जी, न्यू थॉट, न्यू वर्ड्स, न्यू एक्शंस, न्यू रिलेशनशिप्स, न्यू हैबिट्स, न्यू हॉबीज, न्यू संस्कार, न्यू एटीट्यूड, न्यू पर्सपेक्टिव, न्यू विजन, न्यू लाइफस्टाइल, न्यू एनिमेशन, न्यू इमेजिनेशन, सब कुछ नवीन जीवनता में इस जीवन में भर गया। और इसी नवीनता को मुझे अपने जीवन में लाना है, एक नए जीवन की शुरुआत। ओम शांति।